संयुक्त राष्ट्र रेडियो से प्रस्तुत है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 4 फरवरी 2022 के बुलेटिन की हेडलाइंस। कोविड-19 के कारण उभरी टेलीवर्किंग के कुछ फायदे तो हैं, नुकसान भी। सरकारों व नियोक्ताओं से ध्यान देने की पुकार। कोरोना वायरस का मुकाबला करने में बढ़ी चिकित्सा गतिविधियों से बढ़ा मेडिकल कूड़ा कचरा भी। यूक्रेन के इर्द गिर्द तनाव के बीच सुरक्षा परिषद की गर्मा गर्म बैठक। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट को हुआ 1 साल, स्थिति अब भी विस्फोटक। और भारत के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनैकर यूएन शांति रक्षा मिशन से रिटायर। हम आपको याद दिला दें कि मल्टीमीडिया समाचार सामग्री के लिए आप हमारी वेबसाइट पर आना ना भूलें। पता है news.un.org/hi। अब समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने दफ्तरों से दूरस्थ स्थानों और घरों से काम करने यानी टेलीवर्किंग के फायदों और जोखिमों का खाका पेश करते हुए टेलीवर्किंग को स्वस्थ और सुरक्षित बनाने पर एक तकनीकी विवरण जारी किया है। साथ ही इस बड़े बदलाव और मौजूदा डिजिटल परिवर्तन को समाहित करने के लिए उपाय किए जाने की जरूरत को भी रेखांकित किया गया है। WHO में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉ. मारिया नीरा का कहना है कि महामारी ने टेलीवर्किंग में बहुत तेजी से उछाल ला दिया है और बहुत से कामगारों के लिए रातों रात काम करने का तरीका ही बदल डाला है। रिपोर्ट कहती है कि टेलीवर्किंग के फायदों में कामकाज व पारिवारिक जीवन में बेहतर संतुलन, कामकाज के लचीले घंटों का विकल्प और ज्यादा शारीरिक सक्रियता, यातायात में लगने वाला कम समय और तमाम शहरी इलाकों में वायु प्रदूषण में कमी प्रमुख हैं। इन सभी फायदों के फलस्वरूप शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में बेहतरी हो सकती है और सामाजिक रहन सहन भी अच्छा हो सकता है। उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि टेलीवर्किंग की बदौलत बहुत सी कंपनियों के लिए कम लागत में ज़्यादा अच्छी उत्पादकता वाले नतीजे मिल सकते हैं। WHO की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप लाखों टन अतिरिक्त मेडिकल कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है, जिसने स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर भारी बोझ डाल दिया है। कुछ और जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
UN स्वास्थ्य एजेंसी ने मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा कि मुख्य रूप से प्लास्टिक से भरे इस चिकित्सा कचरे के भारी बोझ से इंसानी और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए भी भारी जोखिम उत्पन्न हुआ है। साथ ही कूड़ा कचरा प्रबंधन सेवाओं में बेहतरी लाने की तत्काल जरूरत भी उजागर हुई है। संगठन की इस रिपोर्ट में निजी बचाव उपकरण यानी PPE सामग्री की लगभग 87,000 टन तादाद के विश्लेषण के आधार पर ये बात कही गई है, जो मार्च 2020 से नवंबर 2021 के बीच खरीदी गई। रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया गया है कि इसमें से ज्यादातर सामग्री कूड़े कचरे में तब्दील हो गई होगी। रिपोर्ट में लेखकों का कहना है कि ये आंकड़ा इस बारे में आरंभिक संकेत मुहैया कराता है कि कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में कूड़े कचरे की कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है।
संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने आगाह किया है कि कोविड-19 महामारी के कारण महिला जननांग विकृति यानी FGM के पूर्ण उन्मूलन की दिशा में हुई दशकों की वैश्विक प्रगति पर जोखिम मंडरा रहा है। UN एजेंसियों ने 6 फरवरी को महिला खतना यानी FGM के लिए शून्य सहिष्णुता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर महिलाओं व लड़कियों के मानवाधिकारों, स्वास्थ्य व गरिमा को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कार्रवाई की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पिछले कुछ सप्ताहों से यूक्रेन के इर्द गिर्द बढ़ते तनावों के बीच संकट को टालने के रास्तों पर विचार विमर्श के लिए सोमवार को अपनी पहली बैठक आयोजित की है। हाल के सप्ताहों में ऐसी खबरें आई हैं कि रूस ने यूक्रेन की सीमा के निकट 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक और भारी हथियार तैनात किए हैं। कुछ और जानकारी सुनिए सचिन गौड़ से।
संयुक्त राष्ट्र राजनैतिक और शांति निर्माण मामलों की प्रमुख ने इस सप्ताह सुरक्षा परिषद को रूस और यूक्रेन की सीमा पर मौजूदा हालात से अवगत कराया। अवर महासचिव रोजमेरी डिकार्लो ने दोहराया कि रूस या उत्तर अटलांटिक संधि संगठन की भागीदारी वाला कोई भी सैन्य हस्तक्षेप हर हालत में टाला जाना होगा। दोनों पक्षों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं और बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती की गई है। अवर महासचिव ने आगाह किया कि यह स्पष्ट है कि यूक्रेन में टकराव बढ़ने का अर्थ है अनावश्यक मौतें और तबाही।
व्हाटएवर वन्स पोजीशन रिगार्डिंग द करंट सिचुएशन और द स्टेटस क्वो इन ईस्टर्न यूक्रेन, दिस शुड बी इनकंसीवेबल।
रोजमेरी डिकार्लो कह रही थी कि मौजूदा परिस्थितियों या पूर्वी यूक्रेन में यथास्थितिवाद पर चाहे किसी का कोई भी रुख हो, टकराव से हर हाल में बचा जाना होगा। ये तथ्य है कि ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमें ठहर कर सोचना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के अनुसार मार्च 2014 में रूस द्वारा क्राइमिया को छीने जाने के कुछ ही समय बाद शुरू हुए इस संकट के कारण हजारों लोग हताहत हुए हैं। रोजमेरी डिकार्लो ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेश की अपील दोहराई कि कूटनीति और बातचीत का कोई अन्य विकल्प नहीं है।
म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत नोएलिन हेजन ने कहा है कि देश में सैन्य तख्तापलट के एक वर्ष बाद हिंसा व क्रूरता गहन हुई है, मगर संकट के समाधान के लिए अवसर अब भी मौजूद हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उनका लाभ उठाना होगा। विशेष दूत ने सोमवार को न्यूयॉर्क में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मौजूदा संकट का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने और इस प्रक्रिया में लोगों का भरोसा कायम करने के लिए जमीनी स्तर पर ठोस प्रगति की आवश्यकता है। आगे का रास्ता लंबा और कठिन है, मगर कार्रवाई का समय अभी है। भारत के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनैकर दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन अनमिस के फोर्स कमांडर का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद हाल ही में रिटायर हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनैकर 42 वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने के बाद भारतीय सेना से भी रिटायर हो गए हैं। सुनिए उनके शांति रक्षा करियर पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट, प्रस्तुति अंशु शर्मा।
लेफ्टिनेंट जनरल तिनैकर बचपन से ही सेना में अधिकारी बनना चाहते थे। उनके पिता मुंबई में प्रतिष्ठित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। सेवानिवृत्त अनमिस फोर्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल तिनैकर बताते हैं,
आई जॉइंड अगेंस्ट द विश ऑफ माय पेरेंट्स।
मैं अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ सेना में भर्ती हुआ, पैराट्रूपर बना, रेगिस्तान में युद्ध में विशेषज्ञता हासिल की, प्रगति करते हुए एक कर्नल के रूप में अपनी बटालियन की कमान संभाली और बाद में भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में एक ब्रिगेडियर के रूप में और फिर एक मेजर जनरल के रूप में भारत के उत्तरी भाग में नेतृत्व संभाला। मुझे पहले भी दो बार संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था।
सेवानिवृत्त अनमिस फोर्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल तिनैकर के शब्द। लेफ्टिनेंट जनरल तिनैकर ने संघर्षग्रस्त दक्षिण सूडान में दुनिया के सबसे बड़े शांति मिशन के फोर्स कमांडर के रूप में नागरिकों की रक्षा के लिए विभिन्न देशों के सैनिकों का नेतृत्व किया। अपने कार्यकाल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल तिनैकर ने दुर्गम इलाकों में हिंसा से उत्पन्न चुनौतियों का सामना किया, खासतौर पर कोविड-19 के प्रसार के कारण मिशन के रोजमर्रा के कार्यों में कई बदलाव लाने पड़े। लेफ्टिनेंट जनरल तिनैकर ने बताया कि अनेक लोगों की मौत हुई, मगर उनके शव समय पर वापस नहीं भेजे जा सके, तो इस अवधि में व्यक्तिगत हानि की भावना महसूस की, लेकिन शांति रक्षकों ने बिना डगमगाए अपना काम जारी रखा। लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनैकर अनमिस के सैन्य घटक के शीर्ष पद की समाप्ति के साथ ही भारतीय सेना से भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वो कहते हैं,
आई विल बी हैप्पी टू शेड दिस यूनिफॉर्म।
मैं इस वर्दी को अलविदा कहने पर प्रसन्न हूँ। मैंने इसे लंबे समय तक बहुत गर्व के साथ पहना और इस पर कोई धब्बा नहीं लगने दिया, इसलिए मैं खुश हूँ और मैं इसे छोड़ने में संतुष्ट हूँ। मैंने अपना काम बखूबी निभाया है और मैं इतिहास में पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। मैं आगे देखूंगा और देखूंगा कि अब वर्दी के बिना कौन सा नया पहाड़ चढ़ना है।
अनमिस फोर्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनैकर के शब्द। फोर्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल तिनैकर के विचार में दुनिया के सबसे युवा राष्ट्र दक्षिण सूडान को खुद को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता है।
तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति।